ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगना रघुनाथानितं तं सजीवं साधुयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखानितांश्च भंसाकल्पतरुभश्च स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवा प्रचारिणे निर्विशेष सुन्नवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् मुखं करोति वासलं पंगुलं हेति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्रीगुरुदिनतरणम श्रीचैतन्यश्वरम। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय से श्रवण करेंगे। श्लोक नंबर 48। द लॉर्ड स्लेज द किंग ऑफ डिमन्स, भगवान नृसिंह द्वारा असुरराज का वध, इसके बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री मन उचः मनव वयम् तव निदेशकारिन। हाँ 47? He told me 48. Naga also. Okay. And I have to check because I can. 48 is today? So, they told me 48 also. 47 ho gaya? Oh, isme bhool likha hai. Oh, achha, theek hai. Theek hai, sunke boliye. मनव वयम तव निदेशकारिन दिति जेन देव परिभूत से तव भवता कलास उपसंहृत प्रभो। करवाम ते किम अनुसाध किंकरान। तो मैं हिंदी में बोलूंगा, ठीक है? हाँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं, लेकिन मैं इसका मौका लूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा रहेगा। समस्त मनुओं ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, हम सारे मनु आपको आज्ञा पालक को पालक के रूप में मानव समाज को समाज के लिए विधि प्रदान करते हैं, किंतु इस महान असुर हिरण्यकश्यप की क्षणभंगुर प्रभासत्ता के कारण वर्णाश्रम धर्म पालन विषय हमारे नियम नष्ट हो गया था गए थे। हे स्वामी, अब आपके द्वारा इस महान असुर का वध हो जाने से हम अपनी सहज स्थिति में हैं। कृपया अपने इन शाश्वत दासों को आज्ञा दे कि अब वो क्या करें। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में अनेक स्थलों पर वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख किया है। वे लोगों को इस वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा इसीलिए देते हैं जिससे वे चारों वर्णों तथा चारों आश्रम के नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्वक मानव जीवन बिता सके और इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति कर सके। मनुओं ने मनु संहिता का संकलन किया। संहिता का अर्थ है वैदिक ज्ञान तथा मनु शब्द ये बताते हैं कि इस ज्ञान को देने वाले मनु हैं। ये वैदिक ज्ञान तथा ये मनु कभी तो परमेश्वर के अवतार होते हैं और कभी शक्ताविष्ट जीव। बहुत काल पूर्व भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को उपदेश दिया था। ये मनु सामान्यतः सूर्यदेव के पुत्र होते हैं। अतएव श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवत गीता की महत्ता बताते हुए कहा, इमं विवस्वते योगं प्रक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्रहा। यह उपदेश विवस्वान सूर्यदेव को दिया गया जिन्होंने इसे अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने जो विधि प्रदान की वो मनु संहिता कहलाती है और जिसमें मनुष्य की भांति किसी तरह जीवन यापन किया जाए इसके विषय में वर्ण तथा आश्रम पर आधारित आदेश है। ये अत्यंत वैज्ञानिक जीवन विधियां हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप जैसे असुरों के शासन में मानव समाज छिन्न होकर निम्न से निम्नतर होता जाता है। इस तरह विश्व में कहीं शांति नहीं रह जाती। निष्कर्ष यह निकलता कि यदि हम मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था चाहते हैं तो हमें मनु संहिता में दिए गए नियमों का पालन करने होगा, जिसकी पुष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने किए है। तो ये देवता लोग भगवान नृसिंहदेव को प्रार्थना करते हैं। तो भगवान नृसिंहदेव तो बहुत क्रोधान्वित हो गए थे क्योंकि उनका भक्त का ऊपर इतना अत्याचार किया जाता था। इसलिए तो इतना क्रोधान्वित हो गए थे तो देवता लोग तो कोई सामने भी आ नहीं सकते थे, इतना भयभीत होते थे। तो नरसिंह भगवान अवतीर्ण होने का पहले का बात है। तो एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ में सोए थे और लक्ष्मी देवी उनको पद सेवा करती थी। तो लक्ष्मी देवी पद सेवा करती थी, उनको इसे मन में आया तो भगवान का शरीर इतना कोमल है, इतना नरम है। तो लक्ष्मी देवी ने पूछी, प्रभु आपका शरीर इतना सॉफ्ट कोमल है, लेकिन मैं सुना आप बहुत बड़ा बड़ा असुरों के साथ युद्ध लड़ाई करते हो, तो उन लोग का शरीर तो लोहा जैसा है, आयरन जैसा है। तो इतना नरम कोमल शरीर लेके अभी असुरों के साथ आप कैसे लड़ाई करते हैं। तो भगवान विष्णु ने मुस्कुराने लगे, बोलो तुम देखने चाहते हो मैं कैसे लड़ाई करता हूँ, ठीक तुम्हें दिखाऊंगा एक दिन। तो ये शुरू हुआ, ये नरसिंह भगवान का आविर्भाव का ये पहला शुरू है। तो उस समय तो फिर भगवान का इच्छा से फिर चतुष कुमार आ गए, सब कुछ हुआ। लेकिन ये शुरुआत में क्यों भगवान ने, लक्ष्मीदेव का इच्छा था। जब भगवान इस धरती पर आते हैं ना, बहुत लोगों को इच्छा को पूर्ण करते हैं। ये लक्ष्मीदेव का इच्छा था, जय विजय का भी इच्छा था, जो हम लोग थोड़ा प्रभु के साथ लड़ाई करेंगे। ये तो भगवान है, सब तरीका सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन मल्ल युद्ध लड़ाई का सुख तो उनको प्राप्त नहीं होता है। तो रेसलिंग कौन करेगा इनके साथ, तो रेसलिंग कौन कर पाएगा, हम तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम तो दास है, कैसे करेंगे। थोड़ा विपक्ष मनोभाव आएगा तब तो लड़ाई अच्छा जमेगा, अच्छा रेसलिंग मल्ल युद्ध। तो भगवान तो ठीक है तथास्तु। तो भगवान जो जो चाहते हैं ना, सब वासना को पूर्ण कर देते हैं। तो लक्ष्मीदेव का इच्छा है, उनका प्रश्न है, तुम इतना कोमल शरीर लेके तो कैसा असुरों के साथ लड़ाई करते हो। तो भगवान बोले, ओ तुमको लड़ाई देखना चाहिए, ठीक है एक दिन दिखाऊंगा तुमको। तो फिर तो नरसिंह भगवान रूप में आविर्भूत हुए, और आविर्भूत होके तो नरसिंह भगवान तो हिरण्यकश्यप को मार डाले। तो जब हिरण्यकश्यप मर गया तो देवता लोग सब खुश हो गए, गंधर्व किन्नर सब नाचने कूदने लगे और कीर्तन करने लगे, खुश हो गए। लेकिन नृसिंहदेव भगवान जो क्रोधित हो गए थे, तो इतना क्रोधित हो गए थे, तो उनका भक्त का ऊपर अत्याचार होता था ना, इतना क्रोधित होते थे इतना मूड आ गया, तो सब असुर तो मर गया, लेकिन भगवान का क्रोध अभी प्रशमित नहीं होता है, कमते नहीं, जब पूरा घुसा करके रहे हुए है और इतना भयंकर रूप धारण करके रहे हुए और देवता लोग तो सामने में आ नहीं पाए, क्योंकि भगवान का मूड आ गया ना, घुसा का मूड आ गया। ऐसा आप लोग सुने हुए, अभी तो मालूम नहीं वो सिनेमा के बारे में सुने हुए कि नहीं, तो मैं जब छोटा था एक शोले करके, शोले सिनेमा होता है, आप लोग देखते हैं लगता है, हंसते हैं इसलिए देखते हैं लगते हैं। तो शोले सिनेमा होता, वो एक अमजद खान एक वो भिलियन था, अमजद खान। तो वो लोग जो सिनेमा करते हैं ना, तो बहुत रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल कर मूड ले आते हैं मूड। तो इसका इतना भयंकर मूड आया था, फिर बाद में मैगजीन में लिखा, तो अमजद खान गाड़ी ड्राइविंग करके जाता था हाईवे पर, तो एक जगह पर उनका टायर पंक्चर हो गया। तो उधर रोक के सब गाड़ी को रोकते हैं, तुम रोको, और सब जो देखते हैं डरते हैं, उनका मूड है ना, तो सब हमजद खाए तो ठहरा है, सब भाग जाते हैं, लेकिन वो रोल गया तो अभी लोग डरते हैं उसको। और उधर जो हीरो भी था वो खूब गंभीर रोल करता था, बहुत गंभीर रोल करता था, और वो इतना गंभीर रोल प्रैक्टिस किया, गंभीर वेरी ग्रेव। तो फिर वो सिनेमा खत्म होने के बाद भी कायम मन ऐसा ग्रेव होकर रह गया, वो ग्रेवनेस उसको छोड़ते नहीं। तो भगवान का ऐसा हालत है, तो इतना क्रोधान्वित हो गए और क्रोध को संभाल नहीं पाते, कम नहीं कर पाते हैं। तो देवता लोग अभी सोचने लगे, ये तो एक समस्या तो समाधान हो गया, हिरण्यकश्यप मर गया, लेकिन भगवान तो इतना क्रोध, उनका क्रोध अभी कमते नहीं, क्या होगा। तो सब देवता लोग क्या करेंगे, तो इंद्र के पास गए, ये देवराज इंद्र तुम जाओ, तुम जाके भगवान को थोड़ा क्रोध प्रशमित करो। तो इंद्र ने बोला, नहीं नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, वो भगवान इतना डार्जिलिंग ज्योतिर्मय, मेरा आंखों सब जल जाएगा, कहना इंद्र का सारा शरीर पर आंखों होता है ना, मैं नहीं जाऊंगा उधर। तो कौन जाएगा, तो ब्रह्मा जी, पितामह ब्रह्मा जी, आप जाके थोड़ा भगवान को शांत कीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ये जैसे आग जैसा है, मेरा दाढ़ी सब जल जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। तो जिसको बोलते है कोई जाने के लिए साहस करते नहीं। फिर लक्ष्मीदेव को बोला, लक्ष्मीदेव महालक्ष्मी आप आइए प्रभु को शांत कीजिए। लक्ष्मी, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो प्रभु को ऐसा कभी नहीं देखा। तो भगवान बोला था ना, मैं दिखाऊंगा तुमका रूप। हाँ मैं कैसा युद्ध कर तुम देखेंगे। लक्ष्मी देखे, लोग देवी देखे,
तो बहुत भयभीत हो, लक्ष्मी देवी उनका भी साहस नहीं हुआ जाने के लिए, तो कौन जाएगा प्रभु को शांत करने के लिए, तो गणेश जी आ गए। गणेश, गणेश को जानते हैं ना, महाराष्ट्र लोग तो गणेश को ज्यादा मानते हैं। हाँ, एक गणपति को सब पूजा करते हैं, क्यों गणपति को पूजा करते हैं मालूम है? हमारा स्मार्त मत में गणेश वो विघ्न विनाशक होते हैं। वो क्यों विघ्न विनाशक? क्योंकि वो नरसिंह भगवान का परम भक्त है। नरसिंह भगवान उनको स्पेशल पावर दिए, इसीलिए हमारा वैदिक क्रियाकांड जो कुछ होता है ना, हम लोग पहले गणेश को पूजा करते हैं। हमारा इस्कन में गणेश को पूजा करते हैं, इसीलिए हम लोग पहले गुरु को पूजा करते हैं। और गुरु में सब देवता लोग रहते हैं, गुरु सर्वदेवमय होता है, चल जरूरत नहीं होता है। नहीं तो ऐसा गणेश वो विघ्न विनाशक होता है, नरसिंह भगवान उनको शक्ति दिए, वो नरसिंह भगवान का परम भक्त होता है। जय श्री गौनिताय की, राधा रास बिहार जीव की, सीताराम लक्ष्मण जीव की। तो गणेश जी ने बताए, अरे तुम लोग कुछ मत सोचो, मैं जाके प्रभु को मैं शांत कर दूंगा। तो गणेश तो नरसिंह भगवान का भक्त है, तो नरसिंह भगवान इतना क्रोधित हो गए थे, तो उसे मुख में से आग निकलता है और उसे निश्वास प्रश्न निश्वास लेते हैं। अरे ऐसा निश्वास लेते हैं ना, तूफान जैसा ऐसा हवा निकलता है, गर्मी हवा तूफान जैसे निकलता है उनका मुंह से, और क्रोध देवता लोग पास में नहीं जा सकते हैं। तो गणेश जी तो उनका वाहन का ऊपर क्या सवार होके पढ़ के चढ़ के मुसीक होता है ना चूहा, चूहा तो चूहा का ऊपर, और चूहा का ऊपर तो गणेश तो मोटा है, थोड़ा पेट बड़ा है, तो उधर मुसीक का ऊपर चढ़ के सवार होके आते थे। और जब नरसिंह भगवान का नजदीक आए, कितना जोर से वो हवा निकलता था निश्वास प्रश्वास से, तो तूफान जैसा, तो वो इंदौर का ऊपर गिर गए उधर से। हाँ, जब गिर गए सब देवता लोग हंसने लगे, तो जब देवता लोग हंसने लगे, नरसिंह भगवान भी हंसने लगे, तो देवता लोग हा अब अभी प्रभु शांत हो गए। तो देवता लोग थोड़ा भरोसा आया, लेकिन तब भी नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए थे, थोड़ा ऐसा सर्कमस्टेंशली हंसने लगे, लेकिन मन में बहुत गर्म है। तब फिर ब्रह्मा शिव सब देवता लोग जाके प्रहलाद को बताए, जो प्रहलाद अभी तुम्हारा ये ड्यूटी है, तुम्हारे लिए ये सब कांड हुआ, तो भगवान क्रोधित है, तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी, तुम जाके प्रभु को भी शांत करो। और प्रहलाद थोड़ी डरेगा, ये जो सिंह का बच्चा, तो जैसे सिंह का बच्चा सिंह होता है ना, तो साथ साथ जाके भगवान के पास गया, तो नरसिंह भगवान प्रहलाद को गोद में उठा के बैठा दिए और उसको आलिंगन करते थे, चुंबन देते थे, उनको सर को सूंघते थे और उनके सर को लिकिंग करते थे। और प्रहलाद को बहुत आनंद होता था। आप लोग कैसे आनंद होगा? हाँ, कोई सिंह आपके ऊपर उठा के लिकिंग करेगा, चुंबन देगा तो कांपने लगेंगे, ये भगवान हो जो भी हो। लेकिन प्रहलाद को बहुत आनंद होता था, बहुत खुश होता था। और प्रहलाद को इतना आनंद होता था, नरसिंह भगवान ने सोचने लगे, नरसिंह भगवान तो प्रहलाद को गोद में बैठा के, नरसिंह भगवान को बहुत आनंद लगता था, प्रहलाद को गोद में बैठाए वो भी बहुत खुश होते थे, और प्रहलाद भी नरसिंह भगवान का गोद में बैठ के बहुत खूब आनंद पाता था। लेकिन भगवान ने सोचने लगे, अरे इसको तो गोद में बैठा के मेरे को बहुत आनंद लगता है, लेकिन ये मेरा गोद में बैठे क्या आनंद प्राप्त होता है? नरसिंह भगवान तो मालूम नहीं होता है, क्यों मालूम नहीं होता है? नरसिंह भगवान मालूम नहीं गोद में बैठने से कैसा आनंद है, क्योंकि उन्हें तो पिता माता नहीं, गोद में बैठने का मौका ही मिला नहीं, तो कैसा मालूम होगा? इससे पहले तो मत्स्य अवतार में आए, फिर कूर्म अवतार में आए, फिर बराह अवतार में, कोई पिता माता ही नहीं। तो इस अवतार में जब प्रहलाद को बैठाए, तब तो उनका मन में भाव आया, तो मैं ये मेरा गोद में बैठ के कैसा आनंद इसको प्राप्त होता है, तो इसलिए उनको इच्छा हुआ, मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा ना, ये पिता माता को आश्रय करके अभी आऊंगा इधर, तो नेक्स्ट लाइफ नेक्स्ट इनकार्नेशन कैसा है? वामन देव आए थे ना, तो भगवान का दो तरीका इनकार्नेशन होता है, एक अद्वारा को होता है और एक सद्वारा को होता है। अद्वारा का मतलब कोई पिता माता को आश्रय का बेगर आते हैं, किधर से भी प्रकट हो जाते हैं और क्षणिक कुछ कल प्रकट होकर साथ साथ लीला कर भाग जाते हैं। कच्छप लीला हुआ, सुंदर मंथन हुआ, बस फिनिश। बराहदेव युद्ध हुआ, फिनिश। नरसिंह आविर्भूत हुआ, आविर्भूत होते होते बस फिनिश। लेकिन कभी कभी भगवान जो सद द्वारा इनकार्नेशन अवतार होता है, अवतीर्ण होता है, तब क्या होता है ना, बहुत काल तक लीला करता है और पिता माता को आश्रय करके आता है। भगवान तो सब रस को आस्वादन करेंगे ना, इसीलिए आता है। तो जब प्रहलाद महाराज को भगवान नरसिंह भगवान ऐसे आलिंगन किए, तो प्रहलाद महाराज उनको हृदय को स्पर्श किया, तो नरसिंह पूरा शांत हो गए। शांत होने के बाद देवता लोग जाके उनको प्रार्थना किए। हमारा नवद्वीप परिक्रमा ये बताते हैं, तो नरसिंह बहुत भगवान बहुत इतना उग्र रूप में थे, देवता लोग उनको पास में जा नहीं पाए। जिधर हिरण्यकश्यप को वध किए थे उसी स्थान पर, फिर नरसिंह भगवान जब नवद्वीप आए, देवता लोग आगे पहले से आके नरसिंहपल्ली देवपल्ली करके के स्थान है गोद्रम द्वीप में, तो उधर आके देवता लोग फिर नरसिंह तो नवद्वीप धाम में नरसिंह बाबा का उग्र रूप काम नहीं करेगा, तो उग्र रूप धारण ही नहीं कर पाएंगे। ये तो औदार्य धाम होता है ना, औदार्य धाम में नरसिंह भगवान को भी शांत होकर रहने पड़ता है। इसीलिए हमारा मायापुर में जो नरसिंह भगवान आप लोग देखते हैं ना, मायापुर को कितना भक्त लोग गए, मायापुर विजिट सर, बहुत भक्त लोग गए। ये मायापुर जो नरसिंह भगवान है, ये भगवान नरसिंह स्थानु स्तंभ स्थानु नरसिंह बोलते हैं, उग्र रूप। ये नरसिंह भगवान प्रहलाद को ना, नरसिंह भगवान तो उनका क्लाइमेक्स पॉइंट, जब खंबा से निकल गए युद्ध करते हैं, उससे भी ज्यादा क्रोध जो रूप होता है। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के बाद तो उनका क्रोध कम हो गया, फिर देवता को प्रार्थना से और क्रोध कम हो गया। एक सबसे ज्यादा क्रोध जब युद्ध होता था हिरण्यकश्यप के साथ, असुरों के साथ, तब से भी उससे भी और ज्यादा क्रोध भाव, क्लाइमेक्स पॉइंट भगवान का कौन सा है, जो खंबा से निकलता है, तो भगवान देखते हैं उनका भक्त का ऊपर निर्यातन होता है, देखते हैं, तो एक समय आता है तब से और तो मैं सहन नहीं करूंगा। ये भगवान का क्रोध का सबसे क्लाइमेक्स पॉइंट, उसी रूप में भगवान जो खंबा से निकलता है वो रूप है, ये नरसिंह रूप है। तो नरसिंह भगवान जो मायापुर में आप लोग देखते हैं ना, एक भक्त का सपने में आए थे। हम लोग का जो प्लान करते थे एक विग्रह बैठाने के लिए, उससे पहले मायापुर में बहुत सारी प्रॉब्लम होता था, चोर डकैत घुसते थे, विग्रह को चोरी करके लोग भाग जाते थे, बहुत प्रॉब्लम करते थे। तो हम लोग का प्लान किया जो हम लोग नरसिंह भगवान को बैठाएंगे, तो एक भक्त का सपने में आए ऐसा रूप में, जो रूप में देखता है। तो भक्त उनका बताए ऐसा नरसिंह करना चाहिए। तो साउथ इंडियन एक भक्त था आत्मोत्त प्रभु को, उन्होंने भेजे तुम जाओ दक्षिण भारत जाओ, उधर ऐसा नरसिंह भगवान बनाने के बताओ। तो आत्मोत्त प्रभु फिर दक्षिण भारत जाके जो स्थापत्य के साथ कॉन्टेक्ट किए, जो स्थापत्य होता है वो लोग भी बहुत स्ट्रिक्ट होता है, स्थापत्य लोग होता है, तो उसको ड्राइंग करके देखा है। तो स्थापत्य ने बताया मेरा गुरु को मैं पूछूंगा, वो एक शंकराचार्य या रामानुजाचार्य संप्रदाय का गुरु जो आचार्य होता है वो उनका गुरु थे। तो उनको गुरु को देखा जैसा मूर्ति बनाने का, एक कुछ भक्त लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मूर्ति मत बनाओ, अरे धरती पर ऐसा विग्रह नहीं, एक बार ऐसा विग्रह बनाया था तो जो बनाया था जिसको कम्युनिटी को पूरा जला दिया ये विग्रह, ऐसा विग्रह धरती पर अभी प्रकट नहीं करना चाहिए। तो वो स्थापत्य आके बताए हमारे भक्त को, नहीं नहीं मेरा गुरुजी बताए नहीं होगा। तो भक्त वापस आ गया मायापुर। फिर जयपत का महाराज और उस समय जो लोग थे सब बताए, नहीं नहीं तुम जाओ, हम लोग ऐसे मूर्ति करना चाहिए। तो फिर ये लोग जब गए तो वो फिर गुरु के पास गया, नहीं लोग ऐसे मूर्ति बनाना चाहिए, उनका सपने में आया। तो गुरु जी ने पूछा तो वो लोग कौन है, किधर है विग्रह को पूजा करेंगे? तो बताओ इसकन लोग नवद्वीप में करेंगे। तो उनका गुरु जी बताया वो नवद्वीप में तब होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कि नवद्वीप में भगवान रुग्र रूप में रह पाएंगे, वो प्रॉब्लम नहीं होता। नवद्वीप में जो जाएंगे उधर भगवान का सब उग्र रूप उधर मेल्टिंग हो जाएगा, गल जाएगा, उसे कोई भाव नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोग जाएंगे, हमारा नरसिंह और उग्र भगवान है, लेकिन आप लोग जाएंगे देखेंगे जिन हंसते हैं ऐसे भगवान है। अब विशेषकर जो चंदन यात्रा होता है ना, भगवान को नरसिंह भगवान को चंदन वेश में करता है, बिग स्माइल ऑन हिज फेस, जस्ट लाइक कोई युद्ध कर लेके गए हुए वापस आके बच्चे लोग को बोलते हैं मैं ऐसा युद्ध करता था। ऐसा भगवान भगवान बोलते भक्त लोग, तुमको मालूम है मैं ऐसा हिरण्य कशिपु को ऐसा करके बद्ध किया, फिर हंसते रहता है ऐसा ही, ये भगवान का स्वरूप है। तभी एक एक करके देवता लोग आके वो भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो मनु लोगों ने प्रार्थना करते हैं, तो मनुओं ने प्रार्थना करते हैं जे वर्णाश्रम, मनु संहिता में तो वर्णाश्रम के बारे में सब शिक्षा दिया गया। अब प्रभुपाद तात्पर्य में भी इसका ऊपर बहुत जोर देते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अनेक स्थलों पर वर्णाश्रम धर्म का उल्लेख किया है। तो वर्णाश्रम दो तरीके का वर्णाश्रम होता है, एक सकाम वर्णाश्रम होता है और एक निष्काम वर्णाश्रम होता है, दो तरीके का वर्णाश्रम होता है। देखिए इस कलियुग में वर्णाश्रम धर्म चलते नहीं, कलियुग के लिए वर्णाश्रम धर्म नहीं है, क्योंकि कलियुग कलु सर्वे शूद्र संभवा, इस युग तो मंद संबंध मत मंद भाग्य है उपद्रित। आ कृष्ण भगवान जब धरती छोड़ के गए, कृष्ण सुधाम अपगते धर्म ज्ञानाधिविश, वो धर्म को साथ में लेके चले गए, और हम लोग क्या वर्णाश्रम पालन करेंगे? हम लोग तो नाम को ही गृहस्थ वानप्रस्थ ब्रह्मचर्य और सन्यासी है ना। पुराण में पढ़ो गृहस्थ वर्णाश्रम का अनुसार गृहस्थ का जो कर्तव्य है, कितना गृहस्थ कर्तव्य पालन करते हैं, कितना ब्रह्मचारी, कितना सन्यासी। सन्यासी का जो नियम लिखा गया, उनका जो लाइफस्टाइल बताया गया, कितना सन्यासी ऐसा लाइफस्टाइल मेंटेन करता है, इस कॉलेज में हो नहीं सकता है। गृहस्थ का जीवन यापन प्रणाली इतना कठिन है, ये संभव नहीं है। कितना रूल रेगुलेशंस है, इतना रूल, एक ही रूल है, बहुत रूल रेगुलेशन है। तो उसमें एक रूल है जो गृहस्थ लोग होंगे तो लोग खाना बनाएंगे, भगवान को निवेदन करेंगे, खाने से पहले दरवाजे पर जाएंगे और जोर से चिल्लाएंगे, कोई आदमी है अभी तक खाया नहीं, जो भिखारी होते हैं साधु संत होते हैं सब जो लोग आएंगे लोगों को खिलाएंगे, फिर जाएंगे और कोई बाकी रह गए खाया नहीं अभी तक, तो कोई उत्तर नहीं दे तब आके वो लोग खाएंगे। ये गृहस्थ लाइफ है, कितना गृहस्थ है इधर, ऐसा गृहस्थ आप करते हैं ऐसा? ये सबसे निम्न एग्जाम्पल में दिया, ये वर्णाश्रम के जो मनु जो लिखे हुए ना, शूद्र है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये लोग का नीति नियम का बारे में क्या हम लोग चर्चा करेंगे? ऐसा भी जो दांत मंजन करना है ना, दांत मंजते है ना, तो आजकल तो टूथब्रश हो गया, शूद्र से शुरू करके ब्राह्मण तक सब टूथब्रश व्यवहार करते हैं। तो पहले तो टूथब्रश नहीं था, ट्विक्स। ट्विक्स क्या है? दांतन। दांतन लगता है, दांतन का भी साइज है। शूद्र जो होता है कितना बड़ा, कितना इंच साइज का दांतन व्यवहार करेंगे। और वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण का कितना लंबी दांतन, ये भी लिखा गया है। और नहाने का सिस्टम है, और टट्टी करने के बाद जो परिष्कार करते हैं उनका भी सिस्टम है। सब दूसरा दूसरा दिमाग खराब हो जाएगा। उसको पढ़ने से दिमाग खराब हो जाएगा। तो इससे हम लोग को मालूम होना चाहिए। तो वर्णाश्रम धर्म पालन करना बहुत मुश्किल है, कठिन है। तब भी लोगों को थोड़ा लाइन में ले आने के लिए हम लोग वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं। लेकिन कॉलेज युग में ऐसा काम करता नहीं, तो वैदिक युग में ये सब काम करता था। वैदिक युग में आप लोगों को मालूम है, वेद में ये सब बताया गया, नीति नियम निष्ठा, ये कर्मकांड के बारे में बहुत बताया गया। उपनिषद में ज्ञान के बारे में बहुत बताया गया। लेकिन कॉलेज युग में इतना ये उपनिषद, देखो वेद में जो ज्ञान दिया गया, हम लोग तो सब हिंदू है ना, हिंदू है। अच्छा, जितना क्रिश्चियन होता है, क्रिश्चियन का शास्त्र क्या होता है? बाइबल सब पढ़ते हैं। मुस्लिम का शास्त्र कुरान सब पढ़ते हैं। हिंदुओं का शास्त्र वेद होता है। आप लोगों से कितना लोग वेद पढ़ते हैं रोज? कोई पढ़ते नहीं। और जो भी पढ़ते हैं उन लोग को पूछो कितना समझते हैं वेद को, कोई समझते नहीं। क्या लिखा है इसमें, कोई समझते नहीं। तो वैदिक युग में लोगों का ऐसा दिमाग था, ये वेद में जो लिखा गया इसको समझना इतना कठिन ही होता है। तो वेद तो लोगों ने पढ़ते नहीं पढ़ते थे। उसमें तो वेद तो लिखा नहीं था, पढ़ेगा क्या, सुनते थे। और कौन लोग सुनते थे? ये हाट बाजार में सब लोगों के लिए नहीं। ओडिशा जरा एक नंबर ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण भी एक नंबर ब्राह्मण, दो नंबर ब्राह्मण, तीन नंबर ब्राह्मण होता है। एक नंबर ब्राह्मण मुनि ऋषियों के लिए, जो लोगों का ओडिशा तीक्ष्ण बुद्धि है, वो लोग वेद पढ़ते थे। अब वेद को समझ के लोगों को बोलते थे। साधारण लोगों के लिए वेद नहीं होता था उस समय में, था उतना श्रुतिधर होते थे लोगों ने, इसको श्रुति बोलते हैं। वैदिक युग में होता था, पहले कॉलेज युग में नहीं हो सकता है। कॉलेज युग में हम लोग पवित्र नहीं है, हम लोग सब पतित है और अशुद्ध है, अपवित्र है। इसीलिए कॉलेज युग में हम लोग वेद पाठ नहीं कर पाएंगे, कॉलेज युग में हम लोग यज्ञ नहीं कर पाएंगे, कॉलेज युग में हम लोग अर्चना करने का अधिकार भी नहीं हम लोग का। तो भगवान ने सोचने लगे, ये लोगों का हालत बहुत बुरा है, तो लोग कैसा लोग को मैं उद्धार करूंगा। कॉलेज युग में तो भगवान आते नहीं ना। प्रहलाद महाराज ने उनको प्रार्थना में बताते हैं भगवान को, शरण अवतार त्रिजुग करके बोलते हैं, तुम तीन युग में आते हैं, इस कॉलेज युग में आते नहीं। तो कॉलेज युग में भगवान नहीं आएंगे तो जीवों को कैसा उद्धार करेंगे। तो भगवान भी सोचते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूँ हर युग में भगवान आते हैं, इस कॉलेज युग में क्यों नहीं आता है। तो एक कॉलेज युग का लोग इतना पतित और बदमाश है, भगवान भी आने के लिए डरते हैं इधर। भगवान आएंगे तो उनका अवस्था भार बजा देंगे लोग। इतना पतित है हम लोग। तो भगवान भी सोचते हैं ये लोग कैसा मैं उद्धार करूंगा। तो हमसे और शक्तिशाली दयालु कोई कुछ कोई है जो जाके ये लोग इतना पतित लोग उद्धार कर पाएंगे? तो भगवान को मन में आया, हाँ मेरा और एक विशेष स्वरूप है, मैं नरसिंह रूप में लेकर जाऊंगा। तो कॉलेज में तो सब तो हिरण्यकश्यप है, तो सबको मारने पड़ेगा। महाप्रभु को बताया ना, नित्यानंद प्रभु बताया ना, जब महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र को बुलाए मारने के लिए माधाई को, तो नित्यानंद प्रभु बताए, प्रभु इस युग में तुम्हारा अस्त्र सुदर्शन नहीं है, नाम और प्रेम। तुम असुरों को मारेंगे तो सबको मारना पड़ेगा, क्योंकि कलयुग में सब तो असुर ही है, सब पतित है, सबको मारने पड़ेगा। तो भगवान सोचने लगे तो मैं कौन सा स्वरूप में जाऊंगा, तो भगवान से ओ मेरा एक विशेष स्वरूप है, ये क्या है नाम, नाम भगवान का नाम भगवान से भी शक्तिशाली और कृपालु होते हैं, इसलिए कलि काले नाम रूप है कृष्ण अवतार। नाम रूप में हम लोग भगवान को हर जगह पर प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए जग ही संकीर्तन प्राही, कलि युग में भगवान का नाम पुकार के भगवान का आराधना किया जाता है, क्योंकि कलि युग लोग अपवित्र होते हैं, यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, मंदिर में हम लोग घुस नहीं पाएंगे, सिर्फ पुजारी लोग शुद्ध पवित्र होते हैं और अंदर में घुस पाएंगे, लेकिन भगवान का नाम, नाम रूप में जब भगवान आते हैं तो परिष्कार परिच्छन होकर भगवान को पास जाएंगे, नहीं जिधर भी भगवान को प्राप्त कर पाएंगे उनका नाम का स्वरूप में, टॉयलेट में बैठ के भी भगवान का नाम कर पाएंगे ना, कर पाएंगे ना नहीं पाएंगे। महापुरुष देखा है ना, ये गोपाल गोपाल था, एक वैष्णव तट्टी करने के लिए गए थे, वो जिह्वा को दांत में कामड़ इसे पकड़ के रखे थे, तो गोपाल ने पूछा प्रभु जी आप जब टट्टी करने के लिए गए थे आपको जिह्वा को ऐसा बाइट का दबा के चबा के रखा क्यों, तो प्रभु ने बताया मैं क्या करूं, मैं हर्ष में नाम करता हूं, नाम करते हैं करते हुए हर से मेरा मुंह से नाम निकलता है, लेकिन टट्टी करने का टाइम नाम करना तो अच्छा नहीं है, लेकिन मैं नाम बंद नहीं कर पाता हूं। हम लोग का समस्या होता है नाम करने के लिए, उनका समस्या नाम बंद करने के लिए, तो इसलिए मैं उसको जिह्वा में इसे कामड़ के रखता हूं, पकड़ के रखता हूं। तो गोपाल ने बताया था प्रभु जी जब टट्टी करने के समय आपका आपको आप मर जाते थे तो क्या होगा, मर जाएंगे तो आपको तो भगवान का नाम करने का मौका नहीं मिलेगा, तो महापुरुष का तो ये नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है। तो इसलिए जब महापुरुष ने सुने जो गोपाल ऐसा बताया तो महापुरुष ने बताया ये गुरु है, ये आचार्य है, इसको सिद्धांत मालूम है, वो गोपाल गुरु बन गया। तो इसका मतलब नाम रूप में भगवान को हम लोग सब जगह पर प्राप्त हो पाएंगे, शुद्ध पवित्र हम लोग कैसे शुद्ध पवित्र हो पाएंगे, यज्ञ करने का, अर्चना करने का, ध्यान करने का, ये सब कुछ भी करने का अधिकार हम लोग का नहीं है, हम लोग का जीवन यात्रा प्रणाली ऐसा हो गया। वो प्राचीन समय का बात छोड़ो, वैदिक युग का बात छोड़ो, आज से 50 इयर्स 50 साल पहले हम लोग का जीवन यात्रा प्रणाली जैसा था आज वैसा नहीं है, वो गांव में हो सकता है, जैसे हम लोग जो गांव में थे ना, हम बचपन में गांव में थे तब हम लोग तो टॉयलेट बाथरूम का फैसिलिटी नहीं था, एक किलोमीटर जाओ किधर टट्टी करने के लिए, नहाने के जाओ, और टट्टी करेंगे तो तुमको नहाने पड़ेगा, कपड़ा धोके अंदर घुसने पड़ेगा, हाँ एक कॉमन प्रैक्टिस है। और कुत्ता लोगों का टट्टी का पर स्पर्श कर देंगे, छू देंगे तो नहाने पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेगा, ये था कल्चर उस समय, कुत्ता लोग टट्टी किए हुए तुम्हारा पैर उधर पड़ गया तो नहाने पड़ेगा, कपड़े भी धोने पड़ेगा। मेरा याद है कार्तिक महीना में गांव में हरिनाम संकीर्तन करते, छोटा था मैं, तो मेरा नया पैंट शर्ट खरीदना था, उस दिन सुबह नया पैंट शर्ट पहन के, छोटा बचपन में नया पैंट शर्ट मिलना तो बहुत अच्छा बात है ना, तो आनंद में मैं गया, तो नगर संकीर्तन करता था तो जाता था, एक कुत्ता का कट्टे पर पैर पड़ गया, और जितने लोग मैं तो अपवित्र हो गया, मेरे को भी जो स्पर्श कर वो भी अपवित्र हो जाएंगे, इसीलिए मेरे सब भाग गए, इसको मत छो मत छो, मैं इतना दुखी हो गया, वो अभी नहाने पड़ेगा, ये कपड़ा को धोने पड़ेगा, मेरे को अभी भी याद है। तो ये संस्कृति था, और अभी कुत्ता का टट्टी को स्पर्श कर नहाना क्या है, आप लोग अमेरिका यूरोप जाएंगे जो बड़ा बड़ा आदमी होता है ना, सुबह सुबह से कुत्ता लेके जाते हैं, और उधर नियम है रास्ता में सो लिखा हुआ है कुत्ता टट्टी करना क्रॉस करता है नहीं करना, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कुत्ता को लेके जाता है और बकेट भी लेके जाता है, और जो टट्टी करता है उसका स्पून देकर उठा देता है. एंड देयर द एरिस्टोक्रेटिक पीपल, इफ देयर द एरिस्टोक्रेटिक पीपल, हाई क्लास पीपल का ये हालत है. और आप देखो वैदिक सिविलाइजेशन और अभी का सिविलाइजेशन, क्या शुद्ध पवित्र हम लोग बनेंगे, क्या कर्मकांड करेंगे? कर्मकांड करने का योग्यता ही नहीं हम लोग का, वो शुद्धता नहीं, कर्मकांड का योग्यता ही नहीं हम लोग का. तो जो बात बताता था तो एक किलोमीटर जाके उधर टट्टी करके नहा के अंदर आओ, और अभी किधर टट्टी करते हैं लोग? अभी तो घर में टट्टी करते हैं बैठ के. अरे क्या पवित्र बनेंगे तुम, क्या पवित्र बनेंगे? अभी भी यूरोप में जाने से कुछ कुछ कल्चर है तो टॉयलेट बाथरूम सेपरेट, दे आर स्टिल फॉलो दिस सम एरिया. टॉयलेट बाथरूम सेपरेट, टॉयलेट टट्टी करो फिर बाहर आओ नहा के फिर अंदर घुसो. तो ऐसा विद इन लास्ट 50 years, 50 साल में हम लोग तो देखते हैं ना सिविलाइजेशन का कितना परिवर्तन हो गया, लोगों ने कितना निम्नगामी हो गए. लेकिन एक विचार करने का बात है, क्या बात है? देखो वो वैदिक जो लोग मुनि ऋषि लोग थे, लोगों ने इतना सत थे, जैसे हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं सत्य युग में धर्म का चार पैर में धर्म अवस्थित है, त्रेता युग में एक पैर नष्ट होगा तीन पैर में, द्वापर में दो पैर नष्ट होगा दो पैर में, अभी कलि युग में कितना पैर है धर्म का? हाँ क्या है? धर्म है बस, हाँ एक पैर में ठहरा है. हमारा कुछ नीति न पालन करते नहीं, बहुत पतित है यज्ञ करने का, तपस्या करने का, ध्यान करने का योग्यता भी हम लोग का नहीं है. लेकिन हम लोग यदि एनालिसिस करेंगे तो भगवान कितना कृपालु, भगवान कितना कृपालु. सत्य युग में त्रेता युग में मुनि ऋषि लोग थे, योग करते थे, बहुत ऊंचा तरीका लोग थे. लेकिन उन लोगों को क्या प्राप्त करने का मौका था? और लोग सत्य युग में त्रेता युग में द्वापर युग में जो लोग बहुत बड़े शुद्ध पवित्र थे, उन्नत थे, मुनि ऋषि थे, योगी थे, तपस्वी थे, तभी क्या प्राप्त करने का मौका था? और लोगों का स्वर्ग जाने का मौका था, स्वर्ग जाने का मौका था. लोग बहुत अच्छा कर्मकांड करते थे, अच्छा यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, चंद्रलोक इंद्रलोक जाने का मौका था. आजकल जो अवस्था है कितना लोग स्वर्ग जा पाएंगे वो तो संदेह है. और उसी जमाना में मोक्ष प्राप्त का मौका था, लोग मोक्ष प्राप्त का जो साधना को कर पाते थे, ध्यान करके परमात्मा को रिलेशन कर पाते थे. लेकिन कलि युग में हम लोग कर पाएंगे? स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगे, परमात्मा के दर्शन, क्योंकि ऐसा परमात्मा को दर्शन करने के लिए जो त्याग तपस्या ध्यान का जरूरत है वो लोग हम लोग कर नहीं पाएंगे. उस समय में मुनि ऋषियों का बात छोड़ो, असुर लोग भी इतना त्यागी थे, असुर लोग भी इतना ज्ञानी थे. असुर जो होते हैं इतना बड़ा ज्ञानी थे, योगी थे, तपस्वी थे, हाँ ब्रह्मा को भी आश्चर्य, ब्रह्मा भी आश्चर्य हो गए हिरण्यकश्यप को तपस्या देख के. और ब्रह्मा जी ने बताया तुम जैसे तपस्या के ऐसे कोई तपस्या कर नहीं किया अभी तक, भविष्य में कोई नहीं कर पाएंगे. तो मैं जो बताना चाहता हूं तो अतीत युग में लोगों को उन्नत थे, श्रेष्ठ थे, और उनको स्वर्ग जाने का मौका था, मोक्ष प्राप्त करने का मौका मिलता था, वो लोगों का सब कुछ मिलता था. इन कलि युग में ये सब मौका नहीं है, हम लोग बहुत अयोग्य है, खूब पतित है, अपवित्र है, इसलिए हम लोग योग ध्यान तपस्या कर नहीं पाएंगे. सिर्फ क्या कर पाएंगे? सिर्फ क्या कर पाएंगे? हाँ हरि नाम कर पाएंगे, ठीक है ना? हरि नाम करके किधर जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे. किधर जाएंगे? मोक्ष मिलेगा. हाँ हरि नाम करने से परमात्मा दर्शन मिलेगा. क्या मिलेगा? गोलक मिलेगा. और क्या मिलेगा? हाँ कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा. समझते हैं मैं क्या बताता हूँ? वो जमाना में लोगों सब श्रेष्ठ थे, मुनि ऋषि थे, योग तपस्या ध्यान का भी योग्यता था, लेकिन क्या प्राप्त होता था? स्वर्ग मोक्ष प्राप्त होता था ना, परमात्मा धन प्राप्त होता था ना। लेकिन भगवान का करुणा का महात्म को विचार करना चाहिए। भगवान इतना कृपालु है जो सबसे पतित है उन लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ चीज रखा गया है, तुम लोग को मैं दूंगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने आए, चैतन्य महाप्रभु आके योग्य व्यक्ति को ढूंढते हैं, किसको मैं दूंगा, क्या दूंगा, क्या दूंगा, प्रेम धन दूंगा, धन वेल्थ, प्रेम धन दूंगा, क्या योग्य योग्यता है। चैतन्य महाप्रभु आगे देखते हैं कौन से बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, उनको मैं प्रेम दे दूंगा। खुश ढूंढते हैं, ज्ञानियों को ढूंढते हैं, कौन बड़ा बड़ा योगी है, मैं उनको प्रेम दे दूंगा, ढूंढते हैं। तो क्या ढूंढते हैं, किसको ढूंढते हैं, कौन है बहुत पतित है। तो मैं उनको, चैतन्य महाप्रभु ने एक मोमबत्ती लेकर कैंडल लेकर ढूंढते हैं किधर है पतित, पतितों को ढूंढते हैं ढूंढते हैं, तो कृष्ण प्रेम देते हैं। ये महाप्रभु का करुणा होता है। चैतन्य चंद्र दया करह विचार, विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार। तो ये मन में चमत्कार मिलेगा। ये भगवान का अनंत अवतार में से अवतारों से तो चैतन्य अवतार होते हैं। इनका करुणा कितना है, दूसरा अवतार में भगवान का करुणा नहीं था, नहीं वो निर्दय नहीं होता है। नरसिंह रूप में आए, राम रूप में आए, कृष्ण रूप में आए, तो करुणा है, कृष्ण का करुणा है ना, नहीं हा? अरे सुखदेव गोस्वामी बोलता था ना, अह बकम स्तन काल कुटम, एक कृष्ण कितना कृपामय करुणामय होता है। ये बकासुर का भगनी बकी पुतना जो जहर लगा के आए हुए भगवान को मारने के लिए, और भगवान क्या किए, क्या प्रतिदान दिए उनको, उनको मातृपद दे दिए, कितना करुणा है उनका। तो हमारा आश्चर्य लोग बोलते हैं वो देखने के लिए लगते हैं बहुत करुणा है, लेकिन उनका उतना करुणा नहीं है। क्यों ना, जब पुतना को मार डाले कृष्ण, जब पुतना को मार डाले तो पुतना का जो रिलेटिव थे वो रिलेटिव लोग ने क्या बताया, ओ कृष्ण थैंक यू सो मच, बताया वो क्या बोले, ए कृष्ण कितना निष्ठुर है, मेरा भगने को मार डाला। वो लोग खुश नहीं हुए, अभी 5000 साल बाद में भागवत पढ़ के हम लोग को मालूम होता है तो पुतना को वैकुंठ गोलक वृंदावन गति हुआ, लेकिन तब लोगों को क्या मालूम हुआ। उनका जो रिलेटिव होता है वो लोग तो दुखी हुए ना, ओ मैं पुतना को मार डाले। लेकिन वो कृष्ण भगवान तो गौरांग रूप में आते हैं, वैसा नहीं करते हैं, सब लोग देख पाते हैं। पापी तापी जत छिल हरिना में उद्धारी लो तार साखी जगाई माधाई है, हम लोग सब जगाई माधाई है। जगाई माधाई से वहां वर्तमान लोग और डेंजरस है। तो महाप्रभु आके जगाई माधाई को उद्धार किए। जगाई माधाई की सिर्फ नहीं, वो तो मनुष्य थे, जो पशु थे, जानवर थे, झाड़ीखंड वन में जानवर थे। महाप्रभु जो जाते थे उनको देखे, जो टाइगर डियर्स देर एम्ब्रेसिंग इच अदर, किसिंग करते थे। तो ये महाप्रभु का इतना शक्ति था। तो आज वही महाप्रभु का करुणा सार दुनिया में ये हरिनाम प्रचार होता है। देखो दुनिया में हरिनाम प्रचार होता है, इससे एक एक देश का साथ और एक देश का कितना युद्ध होता है, लड़ाई होता है, संग्राम करते हैं, आपस में मार डालते हैं, मुस्लिम हिंदू को मारते हैं, हिंदू किसको मारते हैं, किसान मारते हैं कभी कभी। तो मुसलमान लोग आपसे भी आपको मार डालते हैं, सब कुछ करते हैं दुनिया में भर के। किंतु हम लोग तो जानवर से और डेंजरस है ना, अभी मनुष्य तो जानवर से डेंजरस है, क्योंकि एक शेर आएगा, एक बाघ आएगा तो दो चार आदमी को मार डालेगा, और एक मनुष्य आएगा एक रिवॉल्वर लेके 100-100 आदमी को मार डालते हैं। वी आर मोर डेंजरस देन द एनिमल्स। लेकिन ये हरिनाम प्रभुपाद ने प्रचार किए, आज देखिए, आज सूर्य सारा दुनिया का लोग, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, अमेरिकन, यहूदी, जापानी, पाकिस्तानी, सब लोग एक साथ में बैठते हैं खाते। आप लोग जाएंगे मायापुर फेस्टिवल का टाइम में, 60 कंट्रीज पीपल आते हैं। मायापुर में ऐसा रहते हैं 50 कंट्रीज भक्त लोग रहते हैं उधर, 50 कंट्रीज। क्या हिंदू मुसलमान के कौन सा देश से आते हैं, तो किससे संभव होता है? ये नाम का प्रभाव से होता है। हम लोग पूछ सकते हैं, और नाम से कितना लोग को प्रेम मिला, प्रेम मिला आपको? किसका प्रेम मिला है सर? इसको एक आदमी को प्रेम मिला प्रेम तो मिला नहीं, थोड़ा आभास तो मिलता है। हमको भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होने से फिर आपस को तो प्रेम कर सकते हैं ना, उतने तो होना चाहिए। भगवत प्रेम प्राप्ति से पहले भक्त का प्रेम करो, और भक्त को सिर्फ प्रेम करने से नहीं होगा, हर इंसानों को प्रेम करो। हर इंसान को प्रेम नहीं करने से नहीं होगा, हर जीवों को प्रेम करो। ये भगवत प्रेम का लक्षण होता है। जो भगवत प्रेम का लक्षण होता है, जो भगवत प्रेमी होता है, उनका लक्षण क्या होता है ना, उनका हृदय इतना नरम हो जाता है, कोमल हो जाता है। हर जीवों का प्रति प्रेम भाव उनका आता है, क्योंकि हर जीव को भगवान का अंश करके मानता है ना, तो भगवत भक्ति का लक्षण होता है। तो ऐसा हम लोग आपस में प्यार कर पाएंगे, हर इंसान को प्यार कर पाएंगे, हर जीवों को प्यार कर पाएंगे, वही होगा हमारा भगवत प्रेम का लक्षण। भगवत प्रेम से ही ये हो सकता है। और प्रभुपद ने इसको संभव किए, नहीं तो देखो कैसा संभव होगा। अमेरिका लोग, रशियन लोग और अफ्रीका का लोगों ने और शुद्ध हरिनाम करते हैं, उतना ही कलयुग में करना इतना आसानी नहीं है। प्रभुपद ने बताया कलयुग में तपस्या क्या है। सत्य तृतीयादि में जो तपस्या करते थे, सर नीचे रख के पैर ऊपर रख के क्या क्या सो करते थे, तो वो जितना कठिनाई नहीं है। इस कलयुग में सिर्फ चार नियम का पालन करना, उस और ज्यादा कठिनाई है। ये तपस्या का मतलब, कलयुग में जो लोग चार नियम पालन कर पाएंगे, वो सत्य तृतीया द्वापर का बड़ा बड़ा मुनि ऋषियों से भी ज्यादा बड़ा आदमी है। लोग इतना कठिनाई, इतना बड़ा तपस्या होता है। लेकिन प्रभुपाद का कृपा से आज देखो सारा दुनिया का लोगों को भगवान के बारे में मालूम होता है। हर जगह भागवत पाठ होता है, चैतन्य चरितमृत पाठ होता है, एक मामूली बात नहीं है। ये महापुर का कृपा से, प्रभुपाद का कृपा से संभव है। जय श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे।